लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 7 फरवरी को पुनः संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ करना शुरू किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno, un'altra volta in piazza.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात, पुनः एक बार प्रांगण में।
Il Vangelo di oggi presenta la guarigione da parte di Gesù della suocera di Pietro.
आज का सुसमाचार पाठ यीशु द्वारा पेत्रुस की सास एवं उसके बाद कई अन्य रोगियों और पीड़ित लोगों की चंगाई को प्रस्तुत करता है जो उनके पास आते हैं। पेत्रुस की सास की चंगाई संत मार्कुस द्वारा वर्णित पहली शारीरिक चंगाई की घटना है। वह महिला बुखार में पड़ी थी। यीशु के मनोभाव और हाव भाव चिन्ह थे जिनको सुसमाचार लेखक इस तरह प्रस्तुत करते हैं। ईसा उसके पास आए और हाथ पकड़कर उससे उठाया। इस साधारण कार्य में बहुत अधिक कोमलता है जो स्वाभाविक प्रतीत होता है। इस प्रकार उसका बुखार उतर जाता है और वह उनकी सेवा करती है। संत पापा ने कहा कि यीशु की चंगाई शक्ति बिना किसी प्रतिरोध के मिलती है और व्यक्ति अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करता है। वह तुरंत दूसरों के बारे सोचता है, अपने बारे नहीं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है, यह सच्चे स्वास्थ्य का संकेत है। संत पापा ने सुसमाचार पर चिंतन करते हुए कहा, वह विश्राम दिवस था। गांव के लोग सूर्यास्त होने का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद जब विश्राम करने का कर्तव्य समाप्त हुआ तब वे बाहर निकले एवं यीशु के पास ऐसे लोगों को लाए जो बीमार और अवधूतग्रस्त थे। यीशु उन्हें चंगा करते हैं किंतु अशुद्ध आत्माओं को प्रकट करने से रोकते हैं कि वे ख्रिस्त हैं।
Fin dall'inizio, dunque, Gesù mostra la sua predilezione per le persone sofferenti.
इस तरह यीशु शुरू से ही उन लोगों के प्रति रुचि दिखाते हैं जो शारीरिक और आत्मिक रूप से पीड़ित हैं। वे पिता के इकलौते हैं जिन्होंने शरीर धारण किया और अपने शब्दों एवं कार्यों से उनका साक्ष्य दिया। उनके शिष्यों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने उसे देखा और साक्ष्य दिया, किंतु यीशु नहीं चाहते थे कि वे उनके मिशन के मूक दर्शक बने, अतः उन्हें भी इसमें शामिल किया। उन्हें भेजा, उन्हें रोगियों को चंगा करने और अशुद्ध आत्माओं को निकालने की शक्ति दी, और यह कलीसिया के जीवन में बिना किसी रुकावट के आज भी जारी है। संत पापा ने कहा, और यह महत्वपूर्ण है, हर तरह के रोगियों की देखभाल करना यह कलीसिया के लिए वैकल्पिक नहीं है, यह अतिरिक्त भी नहीं है। हर तरह के रोगियों की सेवा करना कलीसिया के मिशन का हिस्सा है, जैसा कि यीशु ने किया था, और यह मिशन पीड़ित मानवता के लिए ईश्वर की कोमलता को लाना है। संत पापा ने विश्व रोगी दिवस की याद करते हुए कहा, कुछ ही दिनों में 11 फरवरी को रोगियों के लिए विश्व दिवस में हम इसकी याद करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, जिस सच्चाई को हम दुनिया भर में महामारी के कारण अनुभव कर रहे हैं, इस संदेश को विशेष रूप से प्रासंगिक बना दिया है। यह कलीसिया का महत्वपूर्ण मिशन है। जोब की आवाज जो आज की धर्म विधि में गूंजती है फिर से हमारी मानव परिस्थिति की व्याख्या कर रही है कि कितनी महान है इसकी प्रतिष्ठा। पर हमारी मानव परिस्थिति जिसकी प्रतिष्ठा इतनी महान है दूसरी ओर उतना ही कमजोर भी है। इस सच्चाई के सामने हृदय में हमेशा एक सवाल उठता है, क्यों? इस सवाल का यीशु शब्द जिसने शरीर धारण किया व्याख्या के द्वारा जवाब नहीं देते, क्योंकि हम मानव प्रतिष्ठा में इतने महान और स्थिति में इतने कमजोर हैं। यही कारण है कि यीशु क्यों का उत्तर व्याख्या में नहीं देते, बल्कि अपनी प्रेमी उपस्थिति से देते हैं, जो झुकती, हाथ बढ़ाती और ऊपर उठाती है, जैसा कि उन्होंने पेत्रुस की सास के साथ किया। दूसरों को उठाने के लिए झुकना, संत पापा ने कहा कि हम इसे ना भूलें, क्योंकि यही एकमात्र उपयुक्त तरीका है। जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, अपना हाथ बढ़ाएं और उन्हें ऊपर उठने में मदद दें, यह एकमात्र उपाय है और यही मिशन है जिसको यीशु ने कलीसिया को सौंपा है। ईश्वर के पुत्र ने अपने प्रभुत्व को ऊपर से नहीं प्रकट किया, ना ही दूर से, बल्कि झुककर, हाथ बढ़ाकर, नजदीक आकर, कोमलता में, दयालुता में प्रकट किया। यही ईश्वर के तरीके हैं। ईश्वर नजदीक आते हैं और वे कोमलता और करुणा के साथ आते हैं। बाइबल में हम कितनी बार पढ़ते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या किसी दूसरी समस्या के समय वे दया से द्रवित हो गए। यीशु की दयालुता, यीशु में ईश्वर का सामीप्य, यही ईश्वर का तरीका है। आज का सुसमाचार पाठ भी हमें स्मरण दिलाता है कि यह करुणा पिता के साथ अंतरंग संबंध में गहराई से निहित है, क्योंकि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यीशु अकेले किसी एकांत में प्रार्थना करने चले जाते थे। इसी से वे अपनी प्रेरिताई के लिए शक्ति प्राप्त करते थे, उपदेश देते थे और चंगा करते थे। तब संत पापा ने प्रार्थना की कि कुंवारी मरियम हमें यीशु से चंगाई पाने में मदद दे। इसकी हम सबको हमेशा जरूरत है, ताकि हम भी ईश्वर की चंगाई भरी कोमलता का साक्ष्य दे सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने म्यांमार की याद करते हुए कहा, इन दिनों मैं बड़ी चिंता के साथ म्यांमार में उत्पन्न स्थिति को देख रहा हूँ। एक ऐसा देश जिसको 2017 में मेरी प्रेरितिक यात्रा के बाद से ही अपने हृदय में बड़े स्नेह से रखता हूँ। इस जटिल परिस्थिति में मैं पुनः म्यांमार के लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य, अपनी प्रार्थना और एकात्मकता व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों को देश के प्रति जिम्मेदारी है, वे ईमानदारी के साथ अपने आप को सार्वजनिक भलाई में लगा सकें। सामाजिक न्याय और सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व हेतु राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा दें। तत्पश्चात संत पापा ने नाबालिग अप्रवासियों के लिए अपील की जो अकेले हो जाते हैं। संत पापा ने कहा, दुर्भाग्य से कई लोग हैं, उनमें से कई विभिन्न कारणों से अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए विवश हैं और कई खतरों का सामना करते हैं। उन्होंने लोगों से उनकी मदद का आह्वान किया। तब संत पापा ने इटली में मनाए जाने वाले जीवन दिवस की याद की। उन्होंने इस अवसर पर याद किया कि स्वतंत्रता ईश्वर प्रदत्त एक महान वरदान है, जिसके द्वारा हम जीवन की प्राथमिक अच्छाई के साथ अपनी और दूसरों की अच्छाई खोज सकते हैं और पा सकते हैं। संत पापा ने इटली में जन्म दर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इटली में जन्म दर घट गया है और भविष्य खतरे में है। हम इस चिंता पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि यह जनसंख्यिकीय शीत समाप्त हो जाए और लड़कों एवं लड़कियों का एक नया बसंत आए। संत पापा ने संत बकीता के पर्व की भी याद दिलाते हुए मानव तस्करी को दूर करने में उनकी मदद की याचना करने का आह्वान किया। संत बकीता का पर्व 8 फरवरी को मनाया जाता है और अंत में उन्होंने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया तथा अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
यीशु प्यार करता तुम्हें, 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 यीशु प्यार करता तुम्हें। पापों से हमको बचाता, पापों से करता आजाद, पापों से हमको बचाता, पापों से करता आजाद, दुख और मुसीबत में वो संग रहता, दुख और मुसीबत में वो संग रहता, मेरे वो दिन रात साथ, दुख और मुसीबत में वो संग रहता, दुख और मुसीबत में वो संग रहता, मेरे वो दिन रात साथ, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 8 फरवरी को वाटिकन के औला देला बेनेडिसियो ने सभागार में अधिकृत राजनयिकों से मुलाकात की। इस स्वागत सम्मेलन के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने अपने संबोधन में नव वर्ष की शुरुआत में राजनयिकों के डीन साइप्रस के राजदूत श्री जॉर्ज पालिडस को उनके स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने मूल रूप से 25 जनवरी को होने वाली बैठक को रद्द करने की वजह से किसी भी असुविधा के लिए क्षमा मांगी। संत पापा ने वाटिकन के लिए विभिन्न देशों के अन्य राजदूतों का स्वागत करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने रोमन कुरिया के सभी अधिकारियों को भी उनके सहयोग और सेवा के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने परम धर्म पीठ और सिविल अधिकारियों के साथ सभी लोगों के आध्यात्मिक और भौतिक भलाई को बढ़ावा देने हेतु संबंधों को बनाए रखने की इच्छा जाहिर की। संत पापा ने कहा, महामारी ने हमें मानव अस्तित्व के दो अपरिहार्य आयामों का सामना करने के लिए मजबूर किया, बीमारी और मृत्यु। इसने हमें जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक अंत तक हर व्यक्ति के जीवन के मूल्य और उसकी गरिमा के हर क्षण को याद दिलाया। हालांकि यह दर्दनाक है कि मानने वाले व्यक्तिपरक अधिकारों की गारंटी देने के बहाने हमारी दुनिया में कानूनी व्यवस्थाओं की बढ़ती संख्या अपने हर चरण पर मानव जीवन की रक्षा के अपने कर्तव्य से दूर होती जा रही है। संत पापा ने अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले जिसकी उसे आवश्यकता है। इस महामारी में संत पापा ने कोविड वैक्सीन सभी लोगों और विशेषकर गरीब देशों के लिए भी उपलब्ध किए जाने की अपील की। पर्यावरणीय संकट के बारे में संत पापा ने कहा कि आज न सिर्फ इंसान बीमार है, महामारी ने एक बार फिर से यह प्रदर्शित किया है कि पृथ्वी स्वयं नाजुक है और इसकी देखभाल की आवश्यकता है। निश्चित रूप से महामारी और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण होने वाले पारिस्थितिक संकट से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट के बीच गहरा संबंध है। उत्तराद बहुत अधिक जटिल और स्थायी हैं और दीर्घकालिक साझा समाधानों की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, उदाहरण के लिए जैसे बाढ़ और भूखे की चरम मौसम की घटनाओं या अप्रत्यक्ष जैसे कि कुपोषण और श्वसन रोग, काफी समय तक बने रहने वाले परिणाम देते हैं। संत पापा ने आर्थिक और सामाजिक संकट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने कई सरकारों को आंदोलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कई महीनों के लिए व्यवसायों के बंद होने और उत्पादन में एक सामान्य मंदी के कारण कंपनियों पर गंभीर परिणाम पहुंचे हैं, विशेष रूप से जो मध्यम और छोटे आकार के रोजगार हैं। फलस्वरूप परिवारों और समाजों पर इसका गहरा असर पड़ा है। संत पापा ने राजनीतिक संकट का उल्लेख किया, जो किसी न किसी तरह से दूसरे संकट की जड़ में निहित है, जो कुछ समय से कई समाजों को प्रभावित कर रहा है और जिसका दर्दनाक प्रभाव महामारी के दौरान उभरा है। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने सभी अधिकारियों को उनके सहयोग और सेवा के लिए धन्यवाद दिया। और संत पापा फ्रांसिस ने 8 फरवरी मानव तस्करी के खिलाफ 7वें विश्व दिवस के दिन मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वालों का अभिवादन करते हुए अपने वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें खुशी है कि वे आज प्रार्थना के इस विश्व दिवस पर आध्यात्मिक रूप से एकजुट हैं, जिनका एक विशिष्ट उद्देश्य भी है, तस्करी के बिना अर्थव्यवस्था। इस वर्ष कई स्थानों में अंतरधार्मिक प्रार्थना की योजना बनाई गई है, जिनमें से एक एशिया में भी है। संत पापा ने अपने संदेश में उन सभी भली इच्छा रखने वाले सभी लोगों को समर्पित किया जो मानव तस्करी के खिलाफ खुद को प्रतिबद्ध करते हैं और मानव तस्करी का मुकाबला करते हैं। संत पापा ने उन सभी को याद किया जो संत बखीता की तरह अपने जीवन में तस्करी की त्रासदी का अनुभव किया है। यह महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन हम तस्करी का मुकाबला करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना और जागरूकता हमेशा ठोस इशारों के साथ होनी चाहिए, जो सामाजिक मुक्ति के रास्ते भी खोलती है, जिसका लक्ष्य है प्रत्येक गुलाम व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन का एक मुक्त नायक बने और आम भलाई के निर्माण में सक्रिय योगदान दे। इसके बाद संत पापा ने आज के विषय तस्करी के बिना अर्थव्यवस्था पर अपने विचार एवं चिंतन साझा किया। संत पापा ने कहा कि पिछले 21 नवंबर को फ्रांसिस्को की अर्थव्यवस्था कार्यक्रम में भाग लेने वालों को संबोधित संदेश में अन्य विचार मिल सकते हैं। संत पापा ने कहा, देखभाल की अर्थव्यवस्था, देखभाल को लोगों और प्रकृति की देखभाल, जनहित के विकास के लिए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश के रूप में समझा जा सकता है। एक अर्थव्यवस्था जो काम पर ध्यान रखती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है, जो काम करने के घंटे को कम करके श्रमिकों का शोषण नहीं करती। देखभाल अर्थव्यवस्था का अर्थ है एकजुटता अर्थव्यवस्था। हम ठोस रूप से काम करते हैं, एकजुटता के साथ संयुक्त रहते हैं। हम आश्वस्त हैं कि एकजुटता अच्छी तरह से प्रशासित एक सुरक्षित और अधिक ठोस सामाजिक निर्माण को जन्म देती है। तस्करी के बिना एक अर्थव्यवस्था बाजार के नियमों के साथ एक अर्थव्यवस्था है, जो न्याय को बढ़ावा देती है और विशेष रूप से कुछ लोगों के हितों को नहीं। व्यक्तियों की तस्करी में बाजारों की उदासीनता में नव उदारवादी पूंजीवाद के दृष्टिकोण पर उपजाऊ जमीन मिलती है, जिसका उद्देश्य नैतिक सीमाओं के बिना, सामाजिक सीमाओं के बिना और पर्यावरणीय सीमाओं के बिना लाभ को अधिकतम करना है। यदि इस तर्क का पालन किया जाता है तो केवल फायदे और नुकसान की गणना होती है। विकल्प नैतिक मानदंडों के आधार पर नहीं बनाए जाते हैं। लोगों को देखकर विकल्प नहीं बनाए जाते हैं। लोग संख्याओं में से एक होते हैं और उनका शोषण भी किया जाता है। इन सब के लिए तस्करी के बिना एक अर्थव्यवस्था एक साहसी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान संकट जैसे गंभीर संकट के समय में लोगों को तस्करी से बचाने हेतु इस साहस की अत्यंत आवश्यकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।